आज जो सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिजिक्स, और हम बात करेंगे वर्क के बारे में। जी हाँ, वर्क यानी कि कार्य के बारे में। और आपको बता दें कि जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उदयना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू मैम। नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो जैसे कि आपको मैम ने बताया ही है, हम लोग आज वर्क या कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। कार्य कुछ भी हो सकता है। कार्य आप किसी वस्तु को गति अवस्था से रेस्ट अवस्था में लाने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप जो रेस्ट अवस्था है उसको गति अवस्था में शेप चेंज कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं आप, और भी कई तरह के कार्य जो है वो हम लोग कर सकते हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए जो बल की आवश्यकता होती है, अब हमने बल अप्लाई किया किसी एक पर्टिकुलर वस्तु पे और कोई भी कार्य करने की जो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट थी, हमारी इच्छा थी, हमने वो किया, तो वो जो कार्य है आज हम उसी कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि कार्य होता क्या है, व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ वर्क, और इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जहां पे बात आ रही है कार्य की, तो आपने देखा होगा कि कार्य करने के लिए जो है वो हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं और हम लोग अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत पहले जो थे, जब साइंस ने इतनी डेवलपमेंट नहीं करी थी, उस केस में जो था वो मस्कुलर एनर्जी, जैसे कोई चीज़ ढोनी है, यहाँ से वहाँ कैरी करनी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, तो हम लोग अपने जो शारीरिक क्षमता थे उसी पे डिपेंडेंट थे। धीरे धीरे साइंस ने करवट ली और चीज़ों नई नई चीज़ों की खोज की गई, जिसकी वजह से हम लोगों ने पहले जो है वो शारीरिक एनर्जी से हम लोग जो है वो अपने एनिमल्स जानवरों की एनर्जी पे, जैसे कि हम लोगों ने कुछ जानवरों को सवारी के लिए, कुछ जानवरों को लिए को हमने बोझा ढोने के लिए जो है वो चिन्हित कर लिया और उनसे हम काम करवाने लगे। फिर उसके बाद मशीन्स आ गई। अब आपने देखा होगा कि आपके घर में बहुत सारा काम जो किसी समय में हमारी मदर्स करती थी, वो सब काम जो है वो मशीन्स करती हैं। हमें अच्छे से याद है कि जब हम बचपन में बहुत छोटे छोटे थे तो आपके जो कपड़े धोने हैं वो हम लोग जो है वो हाथ से, हमने अपनी मदर को हाथ से धोते देखा है, और आज वही कपड़े जो है वो वॉशिंग मशीन में धुले जाते हैं। इसी तरह से कोई सामान यहाँ से वहाँ कैरी करने के लिए आपके पास डिफरेंट ट्रॉलीज होती हैं, इवन कि घर में किचन का काम करने के लिए भी आपके पास किचन ट्रॉलीज होती हैं जो सामान को यहाँ से वहाँ लेके जाती हैं। तो देयर आर डिफरेंट मशीन्स जो हमारी जो है कार्य को जो है वो थोड़ा सा सुगम कर देते हैं। मगर अगर हम बात करें, ये तो वो कार्य हैं जो हम लोग दैनिक इसमें करते रहते हैं। अब सबसे बड़ी जो बात है, दैट इज व्हाट इज अ वर्क। तो वर्क की जैसे ही आपके दिमाग में अगर हम कार्य की बात करें, तो आप सुबह से लेके शाम तक जो भी कार्य करते हैं आप उसे कार्य की श्रेणी में रख लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ाई करी तो आपको लगेगा आपने पढ़ने का काम किया, ठीक है। आपकी मदर ने खाना पकाया तो उन्होंने खाना पकाने का काम किया। फिर आपका जो भी मतलब डिफरेंट वर्क हम लोग कर सकते हैं, और उसमें हमारा डिफरेंट वर्क होता है, जैसे कि स्टडी हम कर रहे हैं तो हमारा मेंटल वर्क हो रहा है, हम कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान में रख रहे हैं तो हमारा फिजिकल वर्क हो रहा है। तो ये तो हमारे लेमैन लैंग्वेज में हम लोग इसे वर्क को डिफाइन कर रहे हैं, और लेमैन लैंग्वेज में जब हम कार्य की परिभाषा दे रहे हैं तो हम लोग जो कुछ भी कार्य करते हैं उसे हम कार्य की परिभाषा में ले लेते हैं। मगर क्योंकि आप जानते हैं विज्ञान जो है वो तथ्यों पर आधारित होता है, और विज्ञान की परिभाषा में अगर हम बात करें तो हरेक कार्य जो हमें लगता है कि हमने कार्य किया है वो कार्य नहीं होता। तो कार्य क्या होता है विज्ञान की भाषा में? विज्ञान की भाषा में अगर हम बात करें तो आपका जो कार्य है वो तब कार्य कहलाता है जब आपका देयर इज एनी डिस्प्लेसमेंट, आप कुछ कार्य करें और उस कार्य करने आपने कोई बल लगाया, उस बल के लगाने के बाद जो है वो उसके जो पोजीशन है उस पोजीशन में चेंज आ गया. इन दैट पर्टिकुलर केस भी जो आपका है तभी कार्य माना जाता है, अदरवाइज हम कहते हैं कि कोई भी कार्य नहीं किया गया. अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, लेट अस सपोज दैट ए कांस्टेंट फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन इट्स डिस्प्लेसमेंट डी. ये आपका बुक नंबर वन में पेज नंबर 144 में मैं आपका पैराग्राफ जो है वो बता रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ 6.1 वर्क के अंडर, कि हमने कोई भी कांस्टेंट फोर्स ली जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे कार्य कर रही थी. देखिए आपका ऑब्जेक्ट, आप अपने घर में ले लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, चेयर को ले लीजिए, ठीक है, और आपने उसको जब फोर्स लगाई, एफ फोर्स लगाई, आप जब उसे धक्का देंगे तो क्या होगा, वहां उसकी पोजीशन चेंज होगी, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी, और हमने माना कि वो डिस्प्लेसमेंट जो थी वो डी थी, ठीक है. तो वो आपकी फोर्स जो आपने लगाई, उस फोर्स के की वजह से वो कुर्सी जो है वो डी डिस्टेंस, डी मीटर या डी यूनिट डिस्टेंस वहां पे ट्रैवल करती है. आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं 144 पेज पर फिगर नंबर 6.1 ऑब्जेक्ट है, और उसको जब फोर्स लगाई गई तो वो आपका दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया. अब हमने बात करनी है कि वर्क डन क्या है. तो वर्क डन बाय फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कंपोनेंट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जो एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसका जो प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज द वर्क. और मैथमेटिकली हम इसे लिखते हैं, W इज नॉट गिवन टू द वर्क दैट इज इक्वल टू F cos थीटा डॉट D. आपका जब हम बात कर रहे हैं F cos थीटा, तो F cos थीटा दैट इज द फोर्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड D इज द डिस्प्लेसमेंट. तो आपका डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट है. तो आपका वर्क डन जो है वो फोर्स एफ जो बाय द फोर्स एफ इज गिवन बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कोस थीटा डॉट टी. और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें इसे देन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी. और आपने देखा कि जो आपका डॉट डी है, कॉस थीटा आप देख लीजिए, तो कॉस थीटा वाले केस में आपका जो है थीटा पे डिपेंड करेगा वर्क, कि आपका जो थीटा है उसके हिसाब से आप वर्क कैलकुलेट करेंगे. द सेकेंड थिंग डिपेंड्स अपॉन द डी. डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट. तो देखो मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बोला था कि विज्ञान में तभी हम कार्य का होना मानते हैं जब आपका किसी कार्य को करने में जो है वो वहां पे पोजीशन जो है वो चेंज होती है. तो अगर वहां पे देर इज नो डिस्प्लेसमेंट देर इज नो वर्क. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए कहा था कि आप एग्जाम्पल के लिए चेयर को पुश करिए, आपने चेयर को पुश किया, वहां पे डी डिस्प्लेसमेंट आई, तो आपका वर्क डन जो हो गया वो एफ डॉट डी हो गया, ठीक है. आप दोनों के वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल फाइंड द आंसर. मगर सिमिलरली आप उतनी ही फोर्स दीवार को धकेलने में लगाएंगे तो आपको लगेगा कि दीवार को धकेलने के लिए आपने कार्य किया, मगर क्योंकि दीवार अपनी पोजीशन से नहीं हिली, डी इज इक्वल टू जीरो था, तो आपका वर्क डन भी जो है वो जीरो हो गया. अब आपको ये भी पता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो फोर्स है वो आपका जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डी है आपका दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट भी आपका जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. तो दोनों ही आपके जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटी हैं, उसके बावजूद जो आपका वर्क डन है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी. आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि हैं, जबकि आपका वर्क डन जो कार्य हम करते हैं वो अदिश राशि है. उसका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो आपका किस डायरेक्शन में, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है. अब अगर हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ वर्क की, कि वर्क की यूनिट क्या होती है, उसका मापन जब हम करेंगे तो किस इकाई में उसको मापते हैं, तो हमें पता है कि वर्क जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि जो आपकी यूनिट होगी वो भी आपका फोर्स की यूनिट और आपका डिस्प्लेसमेंट की यूनिट का मान मल्टीप्लीकेशन होगा। हम जानते हैं कि फोर्स का जो यूनिट है दैट इज अ न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है दैट इज मीटर। हेंस वर्क की जो यूनिट हो गई वो हो गई आपकी न्यूटन मीटर। तो ये आपकी न्यूटन मीटर है, मगर न्यूटन मीटर को हम लोगों ने एक स्पेशल नाम दिया, मतलब कि साइंटिस्ट ने, जो वैज्ञानिक होते हैं जो इसको स्टैंडर्डाइज यूनिट्स के नाम देते हैं उन्होंने, तो जो स्पेशल नेम दिया गया दैट इज जूल एंड इट इज डिनोटेड बाय जे। और आपका वन जूल इज इक्वल टू दैट इज वर्क डन बाय फोर्स ऑफ वन न्यूटन। एक न्यूटन बल जब एक मीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा तब हम कहते हैं कि एक जूल कार्य किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। तो हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर जब फर्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो हमने उसमें डायमेंशंस फार्मूला लिखना सीखा था। तो कैसे लिखते थे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला? हम फार्मूला लिखते थे, फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का जो आपका है, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज m इंटू a, और डिस्प्लेसमेंट का होता है आपका डिस्टेंस जो आपका है। तो इन दोनों का देखिए, मास का जो आपका डायमेंशनल फार्मूला है दैट इज द m, एक्सेलरेशन का जो है दैट इज द LT-2, और आपका डिस्टेंस का है L। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क दैट इज m L का स्क्वायर एंड T-2। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला होगा। अब आपका जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स है तो उसमें जब हम बात करते हैं तो यूनिट ऑफ वर्क जो बड़ी है आपकी तो उसे हम किलोवाट में करते हैं, तो किलोवाट पर हावर है, और इट इज रिलेटेड टू जूल एज दैट 1 kWh इज इक्वल टू 3.6×10^6 जूल। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा नहीं करेंगे। आप इसके नमारिकल सॉल्व कर सकते हैं, जब आपको एंगल दिया हुआ है तो आप वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल फाइंड द आंसर। अब हम लोग बात करेंगे दैट इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। आपका जो है वो घनात्मक और ऋणात्मक कार्य, आपको सुनने में अजीब सा लगता होगा कि कार्य जो है घनात्मक और ऋणात्मक कैसे हो सकता है, कार्य तो कार्य होता है। मगर जैसे कि आपने फार्मूला में देखा कि W इज इक्वल टू FD cos थीटा, तो जो थीटा है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो वर्क है दैट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी और ए नेगेटिव क्वांटिटी। अगर हम बात करें, अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखें कि जब आपका एक तरफ को कार्य हो रहा है और उसी तरफ को बल लग रहा है तो हमारा जो है वो वर्क जो है वो पॉजिटिव कार्य में आता है, जबकि हमारा ओपोजिट डायरेक्शन में, एक कार्य एक डायरेक्शन में हो रहा है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हम लोग कार्य करते हैं तो वो बल लगाते हैं तो वो आपका नेगेटिव आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए 6.2 फिगर में आपको दिया है कि एक कार मूव कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है जब उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई तो दोनों के बीच में जो थीटा था दैट इज 0°, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो उनका 0° हो गया। इस वजह से W जो हो गया वो FD हो गया। और दूसरा जो केस है आपका, जो B केस है, उस केस में जो आपका फोर्स था वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इन दैट पर्टिकुलर केस जो आपका थीटा है दैट इज द 180°, वो 180° है। और अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो वी नो कोस 180° इज़ टू -1, तो आपका वर्क डन जो है वो -FD हो जाएगा, तो वो नेगेटिव कार्य है। अगर हम इसको अबव एग्जाम्पल से कंक्लूड करें तो आपका जो भी फोर्स है दैट कैन बी, जो भी वर्क है दैट कैन बी ए नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, और
जो आपका एक्सेलरेटर ऑफ द कार था वो आपको डायरेक्शन ऑफ द मोशन जो है उसमें एक्सेलरेशन पैदा करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है. दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द वर्क डन इज ए पॉजिटिव. जबकि आपकी ब्रेक्स जो है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स अप्लाई करती है ऑपोजिट टू द मोशन, और ये या तो स्पीड को कम करता है या फिर फाइनली उसे रोक देता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द नेगेटिव वर्क टू बी डन. और अगर आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री होता है, इस केस में हम कह सकते हैं कि वहां पे नो वर्क इज डन, क्योंकि 90 डिग्री कोस 90 दैट इज द जीरो, और उसमें आपका जो है वो जीरो आएगा, तो आपकी वैल्यू आरडब्ल्यू की जो है वो आपकी वहां पे जीरो हो जाएगी और वहां पे कोई भी वर्क हमारा नहीं होगा. तो ये हम लोग जो है वर्क थीटा के बेस पे हम लोग वर्क को नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो में डिफाइन कर सकते हैं. अभी हमने बात करी थी कि जो कार्य हम करते हैं उसके लिए हम किसी फोर्स को लगाते हैं. आप जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे आपका कोई भी कार्य नहीं होगा. आप देख लीजिए, आप ऑब्जर्व करिए अपने आसपास, आप कोई भी छोटा सा छोटा काम भी करेंगे तब भी आपको वहां पे बल की आवश्यकता होती है. अब बल कई तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने अभी चर्चा में फिर से कहा था कि मस्कुलर, पहले हम लोग अपने मस्कुलर फोर्स पे डिपेंडेंट थे, फिर हम एनिमल फोर्स पे डिपेंडेंट थे, अब हम मशीन्स पे डिपेंडेंट हैं. तो कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी तरह के बल की जरूरत होती है और बल अलग अलग तरह के होते हैं. तो हम लोगों ने अभी इससे पहले ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था, और ग्रेविटेशन में लेसन 5 में हमने जो पढ़ा दैट इज ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण भी एक तरह का बल है. और हमने देखा था कि उसी बल की वजह से कभी भी कोई भी वस्तु अगर हम लोग बल लगा के ऊपर की ओर भी फेंकते हैं तो भी वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, देखिए हमारा बल गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा, इसलिए वो वापिस एक पॉइंट पे जाने के बाद वापिस धरती की तरफ खींच के चली आई. हमने एक बल लगाया जो कुछ दूरी तक तो उसके अगेंस्ट काम कर सका, मगर एक पॉइंट के बाद वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा आकर्षित होके फिर से धरती की तरफ को ही आ गया. इन जनरल केसेस हम लोग बिना कोई फोर्स लगाए कोई चीज जो है वो फ्री हैंड से छोड़े, इन दैट पर्टिकुलर केस फिर से अर्थ जो है वो उस पे बल लगा के अपनी ओर आकर्षित कर लेती है. तो जब हम बात कर रहे हैं फोर्स और बल की, तो जब हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल की, तो डेफिनेटली जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो फोर्स ऑफ ग्रैविटी है, तो वो भी कार्य करती होगी. तो आज उसके बारे में बात कर लेते हैं. वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रैविटी, हमें पता है कि जो भी मास m है और उसे जब हम लोग लिफ्ट करते हैं किसी भी हाइट में, तो वो आपका जो है सेम मास बीइंग लोअर्ड बाय डिस्टेंस h. ठीक है, आप देखिए दो, यहाँ पे आप देखेंगे कि 147 पेज नंबर पर आपके पास दो पिक्चर्स हैं. एक पिक्चर ए में जो है वो एक मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो m है, और उसका जो हम बात करें अगर वेट की तो वो आपका mg है, क्योंकि हमें पता है कि द्रव्यमान अलग चीज होती है जबकि आपका वेट अलग होता है, और आपका जो वेट होता है, जो आपका भार होता है, वो आपका जो है वो प्रोडक्ट है, दैट इज ए फोर्स एंड दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए. और क्योंकि ये हम फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, इसलिए ए जो है रिप्लेस किया था हमने जी से. तो आपका जो एम जी है जो किसी पर्टिकुलर हाइट तक ऊपर लिया जाएगा तो वो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम कर रहा है. ठीक है, और जब वो नीचे को आ रहा है तो वो ग्रेविटेशन के साथ काम कर रहा है. तो इन केस जब आपका एम जो वेट है, जब आप उसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, वो जब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट काम कर रहा है, इन दैट पर्टिकुलर केस थीटा जो है वो आपका 180 डिग्री है. मैंने आपसे कहा था कि दो बल जब आपस में ओपोजिट डायरेक्शंस में काम करते हैं देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उस स्पेस केस में जो है वो डब्ल्यू आपका जो हो गया एफ डी कॉस 180 डिग्री और माइनस एम जी एच. तो जो कार्य ग्रेविटी के द्वारा किया गया, किसी कार्य किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए दैट इज अ माइनस जी एम जी एच एम इज अ द्रव्यमान जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज द हाइट जिस पे उसने उसको लिफ्ट किया. सिमिलरली जब वो आपको आप नीचे की तरफ उसको लोअर ला रहे हैं लोअर टूवर्ड्स द अर्थ कर रहे हैं इन दैट पर्टिकुलर केस आपका ग्रेविटेशनल पुल तो उसे अट्रैक्ट कर ही रहा है और वो फोर्स उसे की तरफ ही चल रही है. इन दैट पर्टिकुलर केस थीटा जो था वो आपका जो है वो जीरो डिग्री आएगा और आपका डब्ल्यू जो है वो एम जी एच है. तो यहाँ पे आप देखिए कि जब हम लोगों ने लिफ्टेड अप किया तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो नेगेटिव था. तो ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जब हम लोग बल करेंगे तो जो कार्य होगा वो नेगेटिव होगा नकारात्मक होगा. जबकि जब हम ग्रेविटेशनल पुल के तरफ या उसकी डायरेक्शन में कार्य करेंगे तो वो आपका धनात्मक कार्य होगा. अब हम बात करेंगे कि वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स छोटी छोटी जो आप स्ट्रिप्स बना के आप जो है वो कार्य को अच्छे से समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जो भी फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट है इट्स ए कांस्टेंट. दिस मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू. ऐसा कुछ नहीं है. आपने देखा होगा कि आप खुद एग्जांपल दे लीजिए कि आप कुर्सी को धक्का मारने के लिए पहले बिल्कुल मान लो दो उंगली से आप उसे पुश करिए तो आपका फोर्स डिफरेंट होगा. आप चार से करेंगे आपका डिफरेंट होगा. आप पूरे एक हाथ से करेंगे तब अलग फोर्स होगी. तो दोनों हाथों से करेंगे तो आपकी अलग होगी. तो जो आपकी फोर्स है वो आपकी डिफर हो सकती है वो आपका कॉन्स्टेंट नहीं होगा. और ये जो फोर्स है दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग जो वर्क है. मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है और वो बल जो है वो हमारा डिफरेंट है डिफरेंट टाइम स्पैन पे. तो अगर हम लोग डिफरेंट टाइम स्पैन पे जो कार्य लग रहा है देखिए फिगर नंबर 6.4 पे पेज नंबर 49 में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो अलग अलग समय पे अलग अलग बल जो लग रहा है वो आप जब उसे कंबाइंड कर देते हैं तो सबका सम जो है दैट इज नोन एज अ टोटल वर्क डन. द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप्स आप कितनी भी ले सकते हैं छोटी से छोटी ले सकते हैं थोड़ी बड़ी कर सकते हैं एज पॉसिबल सो दैट द एरियाज ऑफ ऑल स्ट्रिप्स एडेड टूगेदर एंड जो आपका टोटल एरिया होगा दैट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स. इसे और अच्छे से अगर हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल जो आपका जो है दैट इज अ स्प्रिंग. आप स्प्रिंग में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से आपके अलग अलग जो आपकी फोर्स आप लगाएंगे तो उस केस में आपका जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट होगा. देखिए के फिगर नंबर 6.5 है इसमें आपका जब ए केस है तो कोई ऑब्जेक्ट आपका जो है वो आपका जीरो एक्सिस कर टू जीरो मतलब डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो है और वो आपका एक एंड पर फिक्स है उस किसी एक एंड पे उसने स्प्रिंग के साथ उसे बांध दिया गया है. तो उस केस में जैसे ही हम लोग उसे स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स हम उसे पुश कर रहे हैं धक्का दे रहे हैं अंदर की तरफ तो उस केस में जो है वो आपका अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वो अंदर की तरफ हो गया. और सिमिलरली उसी ऑब्जेक्ट को हम धक्का अंदर की तरफ मारने की बजाय जब बाहर की बात करेंगे तो आपका जो है वो बाहर की तरफ खींचेगा. तो आप देख रहे हैं और ये सिर्फ देखने की बात नहीं है आप इसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं. आप एक एज पे अपने एक हाथ में एक स्प्रिंग को पकड़ लीजिए दूसरे हाथ से उसे पुल करेंगे तो पुश करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपस में और क्लोज हो जाता है जबकि आप जब इसे खींचते हैं तो आपका जो है वो आपका बाहर हो जाता है. तो जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स है इज पॉजिटिव बट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज. तो ये जो कैलकुलेशंस हैं आपकी दैट कैन बी डन बाय द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन. ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिया गया हुआ है और आप इसको आराम से निकाल सकते हैं. सिमिलरली अगर हमें किसी भी तरह से ग्राफिकली से निकालना हो तो आपने देखा कि फिगर नंबर 6.6 में जो है वो आपका वो वहां पे उन्होंने दे रखा है कि ग्राफ, और ग्राफ का आपको पता ही है एरिया निकालना है, ये ट्राइंगल बना है और उसका हाफ बेस इनटू हाइट हो गया, तो आपकी जो उनकी वैल्यूज है यू विल पुट द वैल्यू एंड यू विल फाइंड द आंसर. तो ये हमारा जो है वो वर्क के बारे में बात करता है. मेजरिंग स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है ये, तो आपका जैसे धरती की तरफ जब अट्रैक्ट होता है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको, वो आपके हैं. साथ में आप इनको और अच्छे से समझने के लिए आप अपना नमारिकल्स इसमें कर सकते हैं. अब देखिए कि जो कार्य है, हमने कहा कि हम कार्य करते हैं, किस वजह से करते हैं, क्योंकि हमें कई कार्य करने होते हैं डे टू डे एक्टिविटीज के लिए. कैसे करते हैं? बाय अप्लाइंग द फोर्स, किसी भी तरह की फोर्स, चाहे किसी भी तरह का बल, चाहे वो ग्रेविटेशनल बल है, चाहे वो आपका मस्कुलर बल है, चाहे वो आपका मैकेनिकल बल है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, कोई भी तरह से किसी भी तरह के बल को यूज करते हुए हम लोग जो है वो कार्य करते हैं. मगर जो कार्य है, कार्य में हमें ये जो दिया जाता है उसमें वो ये कहता है कि आपने कार्य कर दिया, कार्य कर दिया आपने, या तो घनात्मक कार्य किया, ऋणात्मक कार्य किया, या फिर आपने कार्य वहां पे जो भी था वो कर दिया. मगर दो लोग जब एक कार्य को कर रहे हैं तो एक आदमी जो है उसी काम को जल्दी खत्म कर देता है, जबकि दूसरा आदमी जो है वो उस कार्य को जल्दी नहीं खत्म करता. तो जो आपका वो जो है कि कोई एक कार्य को जल्दी खत्म कर दे रहा है, कोई दूसरे उस कार्य को जल्दी नहीं खत्म कर पाता, उसके लिए ज्यादा टाइम लेता है. टू व्हाट इज अ रीजन? जैसे कि हमने कहा कि हमारा जो मस्कुलर बल था, जो हम मस्कुलर अपनी कार्य करने की, अपने कार्य करने की क्षमता थी, उसको रिप्लेस किया हमने किसके साथ? जानवरों के साथ. जानवरों को रिप्लेस किया किसके साथ? मशीन्स के साथ. क्यों? क्योंकि जो काम हम कर सकते थे हमारे करने की क्षमता से ज्यादा अच्छे से जानवर कर सकते थे, जानवरों की क्षमता से ज्यादा अच्छा मशीनें कर सकती थी. तो वो जो हमारे कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम पावर कहते हैं. एंड नाउ आई विल डिफाइन द टॉपिक दैट इज द पावर, की कार्य करने की जो क्षमता होती है. तो आपने जैसे कि हमने सीखा कि कैलकुलेट कैसे करते हैं वर्क डन को, मगर हम लोग जब इस कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम लोगों ने ये नहीं कंसीडर किया कि जो आपका कार्य था वो एक सेकेंड में हुआ या फिर एक घंटे में हुआ, कहीं भी इस चीज की बात नहीं कही गई, जबकि ये मैटर करता है कोई एक कार्य जो है आपका वो कितनी देर में किया गया. और इन अवर डेली लाइफ जो है उसे कंसीडर करने के लिए देयर इज ए पावर. और पावर कैसे निकाली जाएगी? द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर. जिस रेट पर जो है आपका कार्य किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, उसे हम लोग जो है वो पावर कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देख लें कि ए मैन मे टेक सेवरल आवर्स टू लोड ए ट्रक एंड विद सीमेंट बैग. सीमेंट बैग है वो किसी ट्रक में या तो अपलोड करने हैं या फिर आपका वो डिलोड करने हैं. तो सिर्फ अगर एक आदमी को कार्य दे दिया जाए तो वो कई घंटे ले लेगा. इवन कि अगर हम एक मतलब दो लोगों को दे दें तो हो सकता है कि एक आदमी जो है वो उसको जल्दी कर ले जबकि दूसरा आदमी देर से करे, तो वो भी चांसेस है. जबकि हम यही काम मशीन को दे दें तो मशीन उस कार्य को बहुत जल्दी कर देगी, बहुत ही कम समय में कर देती है. इसलिए कार्य किस क्षमता से किया जा रहा है, किस दर से किया जा रहा है, ये जानना बहुत ही जरूरी होता है. तो जो हमने कहा तो उसको जानने के लिए देयर इज ए पावर एंड द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर. और अगर मैथमेटिकल फार्मूला की बात करें तो मैं ये कहती हूं कि अगर पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर वर्क टी टाइम में डब्ल्यू वर्क किया जाता है तो जो पावर है पी दैट इज गिवन बाय वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. उस पर्टिकुलर टाइम में कितना कार्य किया गया, उस कार्य को जब हम उस पर्टिकुलर टाइम से डिवाइड करते हैं देन इट इज नोन एज द पावर. पावर को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं दैट इज द डब्ल्यू अपॉन टी. और अगर हम लोग बात करेंगे एसआई यूनिट्स की तो हमें पता है कि अगर हम दोनों की एसआई यूनिट्स की बात करें तो डेफिनेटली वी विल फाइंड द पावर ऑफ सॉरी यूनिट ऑफ पावर. तो देखिए हमने कहा पावर जो है दैट इज द W अपॉन T. तो W आपका हमने अभी अभी ऐसा यूनिट की बात करी न्यूटन मीटर होता है, या न्यूटन मीटर को हमने जो ऐसा ही उसमें दिया नाम दैट इज द जूल. तो हमने उसका लिख दिया जूल. और आपका टी को ऐसा यूनिट जो है वो सबको पता है दैट इज द सेकेंड. तो पावर की जो आपका ऐसा यूनिट हुई दैट इज जूल पर सेकेंड. और जूल पर सेकेंड को जो हमने नाम दिया दैट इज अ वाट. तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट एंड इज एब्रीवेटेड एज कैपिटल W. पावर ऑफ एन एजेंट डूइंग वर्क इज 1 W इफ 1 joule. कब होगा ये 1 watt? जब आपका 1 joule वर्क जो है वो 1 second में किया जाता है आपका. तो आपने देखा कि पावर जो है वो दैट इज अ जूल पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू वाट. अगर हम वाट की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि जब 1 second में 1 joule कार्य किया जाएगा तब उसका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो पावर है दैट इज अ 1 watt. और अगर हम लोग इसी को, क्योंकि इससे वेरी स्मॉल यूनिट तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं बिगर यूनिट्स में, तो जो आपका 1 kilowatt है दैट इज अ 10^3 watt एंड जो आपका 1 megawatt है दैट इज गिवन बाय 10^6 watt. एंड आपका जो इन्वेंटर है इसके दैट इज द स्कॉटिश इन्वेंटर एंड मैकेनिकल इंजीनियर जेम्स वाट इज रेनॉर्ड फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ स्टीम इंजन एंड दिस ही इंट्रोड्यूस द हॉर्स पावर एज ए यूनिट ऑफ पावर. जैसे कि ये हम लोगों ने पावर करी और फिर उन्होंने जब स्टीम इंजन की एफिशिएंसी को प्रूव किया तो उन्होंने फिर वहां पे हॉर्स पावर को भी इंट्रोड्यूस किया. और आपका जो अगर हम डायमेंशंस फार्मूला की बात करें तो हमें पता है कि P इज इक्वल टू दैट इज वर्क अपॉन टाइम. वर्क को जो है दैट इज द फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और हमने वर्क के डायमेंशनल फार्मूला पहले से निकाल रखा था ML का स्क्वायर T-2 और यहाँ पे एक टाइम आपका और है T-1. देन टोटल डायमेंशन जो होंगी दैट इज द ML स्क्वायर T-3. आज हम लोगों ने जो है वो वर्क के बारे में पढ़ा है और इसके डायमेंशनल फार्मूला, इसकी ऐसा यूनिट्स के बारे में बात करी है. थैंक यू.